अल्लाह रहमान रहीम। पिछली दफ़ा हम सूरह मरियम यानी 19वीं सूरत का के 75 आयत कर चुके थे और ये 16वां पारा चल रहा है। इसके आगे इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यज़ीदुल्लाहु लज़ीना हतदू हुदा, और अल्लाह ताला वो लोग जो हिदायत हासिल करते हैं उनको हिदायत में ज़्यादती देता है और हिदायत देता है। तो हिदायत के माने समझना ज़रूरी है, क्योंकि सूरह फातिहा में हम दुआ मांगते हैं कि अहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए। तो हिदायत का मतलब रास्ता बताना है, रास्ते पे चलाना नहीं है। ये ज़रा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में रहती कि अब जैसा मैं आपसे पूछा कि भाई कपड़ा कहाँ अच्छा मिलता, तो आप बोले सीधे हाथ से चले जाइए, एबिट्स पे दुकानें हैं, बस ये हिदायत हो गई है। हिदायत का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे लेके जा रहे हैं और अपना पैसा खर्च के दिला रहे हैं, हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये हिदायत नहीं है। तो आप जो दुआ कर रहे हैं अहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो आप अल्लाह ताला से बता रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि मुझे कुरान और हदीस के रास्ते रास्ता बताइए, मुझे पढ़ने की तौफीक दीजिए। तो अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो हिदायत हासिल करता रास्ते पे चलता, तो हम उसको और अच्छे कपड़ों की दुकानें बताते हैं और अच्छे रास्ते बताते हैं उसके। जैसा एक मिसाल लीजिए, दीन की मिसाल लीजिए कि भाई कोई साहब नमाज शुरू कर दिए, अब नमाज शुरू करने के बाद एकदम ख्याल आया कि भाई जब नमाज पढ़ ही रहे हैं तो ये झूठ क्यों बोलना, गीबत क्यों करना, ऑफिस को वक्त पे जाना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए लोगों को। तो आप जैसा जैसा हिदायत हासिल कर रहे, रास्ता अल्लाह ताला बता रहे हैं, आप वो रास्ते पे चल रहे, तो अल्लाह ताला हिदायत में और तरक्की देते चले जा रहे। तो ये अल्लाह ताला का उसूल है कि जो हिदायत हासिल करता है उसकी हिदायत में और इजाफा करते हैं। वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बी का सवाबन व खैरुन मरद्दा, और आपके पालने वाले मालिक के पास बाकी रहने वाली नेकियां सवाब के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से बहुत बेहतर है। बाकी रहने वाली नेकियां क्या है? देखिए, नेकी तो एक ये भी है कि भाई कोई गरीब पे तरस खा के खाना खिला दिया, कोई पुराना दोस्त मिल गया बेचारे के हालात खराब है, आप दे दिए, आपकी नीयत सिर्फ ये थी कि भाई दोस्त की मदद करना, वहां अल्लाह का जिक्र नहीं था। तो बाकी रहने वाली नेकियां ये है हमारे लिए कि वो नेकी कुरान और हदीस के मुताबिक हो। आज हम लोग बहुत सी चीजें कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि नेकी कर रहे हैं, कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहे हैं, वो नेकी नहीं होती। तो नेकी वही है जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, उसमें खालिस अल्लाह ताला को खुश करने की नीयत हो और रियाकारी ना हो, लोगों को दिखाने के लिए नेकी ना हुई हो। तो बोल रहे हैं कि ऐसी नेकी जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए, कुरान और हदीस के मुताबिक है, जिसमें रियाकारी नहीं है, दिखावा नहीं है, तो वो जो है सवाब के लिहाज से यानी रिवार्ड के लिहाज से और अंजाम यानी रिजल्ट के लिहाज से बेहतरीन है। अब यहाँ कुछ आयतें जो है बाज रेफरेंसेस में आया है कि आस बिन वायल एक साहब थे, साहबी नहीं थे, साहबी के वालिद थे, उनके बारे में उनके किसी एतराज के बारे में जवाब है, और बाज उल्मा का ख्याल है कि ये एक जनरल बात है बिल्कुल। अफरायत लजी कफारा भी आया तेना व खाला लऊतियन्ना मालन मालों व वलदा, क्या आपने उस शख्स को देखा जो हमारी आयतों का कुफर करता है, इनकार करता है और कहता है कि मैं यकीनन दिया जाऊंगा माल और औलाद, यानी अपने से वो समझ रहा है कि मुझे माल और औलाद दी जाएगी। अब यहाँ बास तफासीर में आखिरत की बात आ रही है, तो आखिरत में माल मिलना और औलाद मिलना समझ में नहीं आता। आखिरत में तो जजा सजा जो भी है, माल का क्या तसव्वुर है, तमाम काइंड्स में है, खाना पीना है, तमाम चीजें काइंड्स में है, वहाँ कैश के पैसों की वहाँ क्या जरूरत होगी। तो यहाँ ये मालूम होता है कि ये अपने फ्यूचर के बारे में कह रहा है कि हालांकि मैं कुफर कर रहा हूँ लेकिन मैं माल और औलाद दिया जाऊंगा। तो अल्लाह ताला इसके जवाब में बोल रहे हैं कि अत्तलाल गैबा, क्या इसको गैब का इल्म है, इसको मालूम है कि क्या दूंगा, वो व्हाट द स्टार्स फोरटेल देख लिया होगा, मुमकिन है सब वाहियात कस्म की चीजें, तो क्या इसको इल्म है गैब का। अमित तखाजा इंदा रहमानी अहदा, या फिर वो रहमान से अहद लिया है, कोई वायदा लिया है। अब यह बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि पूरे कुरान में रहमान का लफ्ज 57 टाइम्स आया है और मैक्सिमम इस सूरत में 16 टाइम्स जो है रहमान का लफ्ज आया है। रहमान का मतलब यह है कि फायदा पहुंचाने वाला, तो अल्लाह ताला तो फायदा पहुंचाने वाले हैं, तो क्या ऐसी जात जो फायदा पहुंचाती है उससे इसने कोई वायदा लिया है? कल्ला, हरगिज नहीं। सनक्तुबु मा यकूलु, और ये जो कुछ कह रहा है हम इसको लिखते जाते हैं। वनमुद्दु लहु मिनल अजाबी मद्दा, और हम इसके अजाब में इजाफा ही करते चले जाएंगे, क्योंकि अना की कैफियत है, ये अल्लाह को नहीं मान रहा है, अपनी अना पे, अपने ईगो पे जो है ये इसका पूरा दारो मदार है जिंदगी का। व नरीसुहु मा यकूलु, और ये जो भी कह रहा है वो विरासत में हमको मिलेगा, मतलब ये है कि ये हमारे पास वापस आएगा जो भी ये बोल रहा है। और वो याती ना फर्दा, और वो हमारे पास अकेला आएगा। भाई यहाँ तो आप चार को लेके मेरे भाई मेरे साथ छेड़छाड़ करता ठहर, मैं अभी महल्ले वालों को बुला के लाता हूँ, भाई को बुला के लाता हूँ, बोले आप ला लिए, वहां सवाल ही नहीं पैदा होता, वहां अकेला जाके हिसाब देना है। जैसा डॉक्टर निसार अहमद एक बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किए कि भाई दुनिया में अजाब होता तो कलेक्टिव अजाब होता, कहीं जलजला आ गया, कहीं तूफान आ गया, कई लोग खत्म हो गए, आखिरत का अजाब इंडिविजुअल अजाब है, एक एक को अजाब होगा, एक एक को अजाब होगा। तो यहां बात आ रही, इसके बाद भी इंशाल्लाह बात आएगी कि ये अकेला आएगा हमारे पास। वत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाही आलिहतन लियकूनू लहुम इज्जा, और ये अल्लाह के सिवा दूसरे इलाह ले लिया है ताकि वो उनसे इज्जत हासिल करे। जरा इस आयत को समझने की कोशिश करना है कि इलाह कौन है। इलाह तो ला इलाह इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, इलाह सुप्रीम अथॉरिटी एक ही है। अब अल्लाह ताला के अलावा जितना है मखलूक है, क्रिएशन है, तो क्रिएशन को उठा के क्रिएटर के लेवल पे बिठा देना, मखलूक को उठा के खालिक के लेवल पे बिठा देना, ये शिर्क की कैफियत है। अब ये क्यों कर रहा है? ये समझ रहा है कि इन चीजों से इसको इज्जत मिल रही है। भाई कोई साहब बोले अरे आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, ओहदा नहीं मिल रहा, बड़ा फलानी जगह जाइए आप, वहां मांगिए मिल जाता आपको। तो ये अल्लाह को हटके, अल्लाह ताला को हटा के दूसरों से जो है मांग रहा है, मखलूक को वो पोजीशन दे रहा है। ये समझ रहा है कि मखलूक में से कोई जो है इनको पोजीशन देगा है। तो मालूम हुआ कि जो कुछ है अल्लाह लहू माफी समावती माफी लर, जो है जो कुछ है आसमानों और जमीन में अल्लाह ताला का है। तो मखलूक को उठा के जो है महज ये आप समझ रहे हैं कि ऐसा इज्जत होगी, आपकी इज्जत नहीं होती, ये तो आजमाइश है। ये बाज लोगों को जो कुछ कामयाबी हो जाती है तो ये आजमाइश है अल्लाह ताला के तरफ से। अल्लाह हमको हमारे मुतालिकीन को ऐसी आजमाइशों से महफूज रखे। कल्ला, हरगिज नहीं। सयकफरूना बिइबादतिहिम, ये जो इलाह इन्होंने बना रखे हैं अल्लाह ताला के अलावा मखलूक से उठा के खालिक का जो मुकाम दिया है, ये जो है इनकी गुलामी की, इनकी परस्तिश की, इनकी वर्शिप की, इनकी पूजा की का इनकार करेंगे। क्या बल्कि एक जगह ये आया, ये बोलेंगे कि हमको मालूम ही नहीं था। कोई मैं समझ रहा हूँ खंबे में ताकत है, मस्जिद का खंबा है हजरत, क्या समझ रहे हैं? अब मस्जिद के खंबे के सामने खड़े रह के जो है मैं दुआएं मांग रहा हूँ, वो खंबे से क़यामत में पूछो तो उन्हें बोलेंगे साहब मेरे को मालूम ही नहीं था, ये खड़े हुए थे मेरे सामने, मेरे को कोई होशो हवास ही नहीं थे, मैं तो मुर्दा था। तो यहाँ ये बात समझना है कि मखलूक को जो है खालिक के लेवल पे नहीं बिठाना है। ये क़ियामत के दिन इनकार कर देंगे कि हमको पता ही नहीं था। वयकूनु अलैहिम ज़िद्दा, और ये इनके खिलाफ जिद हो जाएंगे, अपोजिशन में आ जाएंगे। यानी अपोजिशन में आने का मतलब ये होगा कि ये बिला वजह झूठ तरीके से हम लोगों के साथ ऐसा मामला करें, आप इनको जो है और सजा दीजिए। अलम तरा अन्ना अरसलना अरसलना शयातीन अलल काफिरीना तुअज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, क्या आपने गौर नहीं किया कि हम खुद काफिरों पे शयातीन को भेजते हैं कि उनको उभारें, उकसाए, एक उकसाना, यानी वी सेंड द डेविल्स टू द इनफिडल्स टू इंस्टिगेट विद एन इंस्टिगेशन। देखिए अल्लाह ताला खुद काफिरों पर शयातीन को मुकर्रर कर देते हैं कि इनको उभारें, उकसाएं गुनाह करने पे, इस वास्ते कि इनको जो है सजा, ये गुनाह में मुब्तला हो, कुफर करते हैं, अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, तो ये गुनाह में मुब्तला हो कि इनकी गुनाह की सजा दुनियावी में भी मिले, आखिर में भी मिले, आखिरत में भी मिले। तो ये बात समझना है। और एक एक जगह ये बात आई है कि जो हमारे जिक्र से गाफिल हो जाता है हम खुद उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। हम लोगों का क्या हाल है साहब, हम बिलावजह अपने आप का बहुत बड़ा पोजिशन समझ रहे हैं। कल ही मैं कुछ वहाँ हदीस का कलेक्शन देख रहा था तो एकदम ख्याल आया भाई बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह कैसी मेहनत किए हैं ये लोग, कहाँ कहाँ चले गए हैं, एक एक हदीस के लिए किधर किधर चले गए हैं, हम लोग कभी किए? बल्कि जरा धूप तेज हो गई तो जो है नमाज को जाना भूल जाते क्या, अवॉइड कर देते। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो कुफ्र करता है उसको और सजा देने के लिए शयातीन मुकर्रर कर देते हैं, वो शयातीन इनको भटकाते हैं, भटका के जो है इनको और रास्ते से हटाते हैं। फला ताजल अलैहिम, तो अब इनके बारे में आप जल्दी मत कीजिए, इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, और हमने बेशक हमने इनके लिए सिर्फ दिन गिन दिए हैं कुछ दिन, इनकी मौत तक या इनके अजाब आने तक या कियामत तक हम इनके दिन गिन दिए। आप ये मत समझिए कि हमको इनका इल्म नहीं है, हम इनको जो है सजा देंगे। ये दिन कौन सा होगा? यौमा नहशरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा, और जिस दिन मुत्तकीन जो है यानी फायदा पहुंचाने वाले अल्लाह ताला के सामने वफद एक डेलीगेशन, ऑनरेबल डेलीगेशन, शाही मेहमानों की तरह पेश किए जाएंगे। तो ये मुत्तकी कौन है? देखिए साहबा के बारे में रिवायतों में आता है कि जब याहियो लजीना आमिनू बल्कि कोई आयत आती तो फौरन अलर्ट हो जाते थे कि एक तो हम मुखातिब हैं, वो लोग जो ईमान लाए हैं हम मुखातिब हैं, तो फौरन अलर्ट हो जाते। तो ये मालूम होना है कि भाई उस दिन जो है मुत्तकीन रहमान के पास, अल्लाह ताला के पास जो फायदा पहुंचाने वाले हैं, एक वफ्द की शक्ल में डेलीगेशन, एक शाही मेहमानों की तरह भी जो पहुंचे, तो मुत्तकीन कौन है? तो कुरान से ये बात साबित होती है कि मुत्तकी वो लोग हैं जो अल्लाह से डर के गुनाहों को छोड़ते हैं और फिर नेक अमल करते हैं, खाली रुके हुए नहीं रहते, अल्लाह से डर के गुनाहों को छोड़ते हैं और नेक अमल करते हैं। देखिए समझिए कि दो लोग यहां इस दर्स में आ गए, एक साहब पीने के आदी बेचारे, उनको मालूम हुआ कि भाई शराब पीना हराम है, अल्लाह ताला इसकी सजा देंगे, तो ये अल्लाह से डर के शराब छोड़ दी। एक साहब डॉक्टर के पास गए, बोले साहब वो लीवर में हमेशा गड़बड़ रहती है, वो बोले कि भाई तो आप इतना पीते हैं कि आपका सिरोसिस ऑफ लीवर होने का डर है, मर जाएंगे आप, तो मौत के डर से शराब छोड़े। तो मौत के डर से जो शराब छोड़ा वो मुत्तकी नहीं है, अल्लाह के डर से जो शराब छोड़ा वो मुत्तकी है। फिर शराब छोड़ के खामोश नहीं रहा, कुरान और हदीस पे अमल किया, क्योंकि अमल की वैल्यू है। तो तकवे का मतलब समझना है कि अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाहों से बच रहे हैं और नेक अमल कर रहे हैं, जैसे कि कुरान और हदीस में आया है हम लोगों के लिए। वह नसूखुल मुजरमीना इला जहन्नम विरदा, और ये मुजरमीन जो है, मुजरिम कौन होता है भाई? यहाँ भी जुर्म करने वाला कौन होता है? यहाँ के कानून के खिलाफ जाने वाला मुजरिम है। तो कुरान और हदीस में हमारा कानून है, तो क्योंकि हम कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली समझे तो मालूम हुआ कि वो जो कुरान और हदीस के खिलाफ काम करेगा, इन लोगों को प्यासे ऊंटों की तरह जहन्नुम के तरफ हाँका जाएगा, हकाला जाएगा। अल्लाह हमको हमारे मुतालिकीन को महफूज रखे, इनको हकाला जाएगा। तो ये कौन लोग हैं? मुजरिम है। तो फिर मुजरिम जैसा मुत्तकी समझे, मुजरिम समझे, मुजरिम कौन लोग हैं? जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारते, ये आउटलॉज हैं, मुजरिम है ये लोग। ला यमलुकुना शिफाता इल्ला मन इत्तखज़ा इंदा रहमानी अहदा, इन लोगों को शिफात पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। एक तो ये मुजरिमीन जो है इनको शिफात पे कंट्रोल नहीं होगा, शिफात करने वाले जो है उनको शिफात पे कंट्रोल नहीं होगा, सिवाय उन लोगों के जिसको रहमान, जो फायदा पहुंचाने वाले अल्लाह ताला है, उनसे इन्होंने अहद लिया है, इजाजत ली है, सिर्फ उनको इजाजत दी जाएगी। देखिए यहाँ ये शिफात का मतलब क्यों क्या आ रहा कि भाई हमारे पास बहुत से लोग हैं, मैं खुद सुन चुका हूँ ऐसी बातें, भाई वो फलाने साहब बोले नहीं आप इत्मीनान रखो, क़यामत के दिन हमारे झंडे के नीचे रहेंगे, खत्म हो गई बात। तो अब ईमान और अमल की जरूरत ही नहीं रही, खाली उनका झंडा ढूंढ के झंडे के नीचे चले गए तो फिर जन्नत में चले गए। तो यहाँ कुरान इन चीजों को डिनाई कर रहा है कि क्या इन्होंने इजाजत ली है हमारे से शिफात करने की, इनका क्या मुकाम है हमारे पास, क्या मुकाम है जो इस तरीके के वायदे करके लोगों को जो है भटकाते हैं। तो बोल रहे हैं कि जैसा आयतुल कुर्सी में भी बात आई कि बगैर अल्लाह ताला की इजाजत ही कोई शिफात ही नहीं कर सकेगा, और ये शिफात का बड़ा लंबा मजमून है। फिर वहां भी बड़ी हैबत होती है कि जो बुखारी मिश्कात में जो हदीस आई है, बहुत लंबी हदीस आई है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लोग दौड़ेंगे शिफात के लिए, तो वहां मालूम हुआ कि शिफात ये होगी कि दोजख में जो लोग हैं ईमान वाले उनको निकाला जाए, دوزخ میں جو لوگ ہیں, تو اس کا ثبوت بھی ہے. شب معراج کو جو ہے مالک جو تھے دوزخ کے داروغہ انچارج, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ میں ساتواں طبقہ نہیں بتایا اس لیے کہ اس میں آپ کے ایسے امتی ہیں جو بغیر توبہ کے مر گئے تھے. تو توبہ کرنا ضروری ہے, ہم جو بھی ہے گناہ کو گناہ سمجھنا, توبہ کرنا. تو یہاں پھر اور ایک جگہ یہ آیا کہ نماز کا جو گٹا رہے گا, نماز کا جو نشان رہے گا, اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکے گا. یا اللہ, پھر نمازی بھی دوزخ میں جائیں گے. بھائی نماز پڑھ لیے, پڑھ کے سمجھے باہر نکلے تو بالکل پاسپورٹ مل گیا, آپ کیا جو چاہے کر لو. تو یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں آنا ہے کہ کوئی یہ جو باتیں بول رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے بس وہی شفاعت کرے گا. اور خالو, اب یہ بڑی خاص آیات ہیں, وہ خالو تخذر رحمان ولدا, اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان جو فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے اس نے ایک اولاد لے لی ہے, اس کی ایک اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا, اور بے شک تم جو ہے ایک بہت تباہ کن سخت بات لے کر آئے ہو. تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا, یعنی ایسی بات ہے کہ اس سے قریب ہے کہ تمام آسمان پھٹ جائیں اور زمین چیری جائے اور پہاڑ گر جائیں. کہ ان دعو للرحمن ولدا, کہ تم رحمان کے بارے میں جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی اولاد. بعض یہودی عزیر علیہ السلام کو بولتے تھے اور عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں. تو اب یہ جو غصہ ہے کہ یہ ایسی بات بول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ گر جائیں, ایسی بات بول رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات سمجھیے ذرا, کامن سینس کی بات کو. اولاد کے لیے ماں باپ کا ملنا ضروری ہوتا ہے. آپ کیسی گالی دے دے رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو, سن آف گاڈ بول کے جو ہے کیسی بڑی گالی دے دے. اور سب کو معلوم ہے بی بی مریم کی اولاد ہے, بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے, ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایسی بڑی ذات, ولم یکن لہ کفواً احد, ویسے کوئی ہے ہی نہیں, ان کے بارے میں ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں. دیکھیے اب آپ, ہم بھی ایسا بعض وقت دیکھتے ہیں جو شارٹ ٹیمپرڈ رہتے ہیں, غصہ آتا ہے تو گھر میں تباہی مچا دیتے, پلیٹاں پھوڑتے, کرسیاں پھینکتے, وہ کرتے یہ کرتے, بچے بھی کرتے بڑے بھی کرتے, مرضی کے خلاف بات ہو گئی. تو یہ تو پوری کائنات توڑ کے پھینک دینے کی بات ہے کہ ایسی غلط بات بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ, تو ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسا ہوگی, قرآن میں بات وضاحت کی گئی ہے. تو یہ بات جو ہے بہت غلط کرتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور جو رحمان فائدہ پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہیں ان کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے, اولاد کی ان کو ضرورت نہیں ہے, وہ اولاد نہیں چاہتے ہیں. وہ یہاں چاہنے کے بھی معنی آتے ہیں, وہ اولاد نہیں چاہتے, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اولاد, وہ خود رحمان ہیں, وہ خود دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور یہ بات سمجھیے یہاں, یہ بڑی خاص آیت ہے کہ ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن ابدا, اور کوئی نہیں ہے آسمان اور زمین میں مگر رحمان جو فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے, اس کے پاس اس کی حیثیت غلام کی ہے. اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگئے, بات سمجھیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, بندے ہیں غلام ہیں, بندے فارسی لفظ ہے, غلام ہمارے پاس عام سمجھ سے سلیف کے معنی ہیں, سلیو ہیں اور رسول ہیں. تو پھر ہم کیسا جو ہے دوسروں کو مخلوق میں سے اٹھا کے اونچے اونچے مقامات بنا دیے ہیں ان کے. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ پرہیز کروائے. لقد احصاہم وعداہم عدا, ہم نے ان سب کا حساب کر رکھا ہے. اور یہ عداہم عدا کا اکثر ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے ہر ایک کی گنتی کر رکھی ہے. میرے ٹرانسلیشن میں, میں اس کا ٹرانسلیشن یہ کر رہا ہوں کہ اینڈ وی ہیو نمبرڈ ایوری ون ود اے نمبر, بات سمجھیے, آپ کا کار نمبر ہے, اسکوٹر نمبر ہے, ٹیلی فون نمبر ہے, اکاؤنٹ نمبر ہے, ہاؤس نمبر ہے, پاسپورٹ نمبر ہے, ہال ٹکٹ نمبر ہے, ہر چیز نمبر سے پہچانے جا رہی ہے آپ کی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم لوگ کر سکتے میں نہیں کر سکتا, تو اس کا ثبوت کیا دے رہے ہیں, وہ کلہم آتی ہی یوم القیامتی فردا, تو تم میں سے ہر ایک قیامت کے دن ایک ایک آئے گا نمبر کے لحاظ سے, مس نہیں ہوئیں گا نمبر, سیریل نمبر 1, 2, 3, 4 جو بھی ہے, آدم علیہ السلام سے چلے آ رہا آخری بچہ جو پیدا ہو کے مرا, پوروں کا جو ہے آل آر نمبر, تو ہم مس ہی نہیں ہو سکتے کہ بھائی اتنے 6 بلین انسان ہیں اس وقت, کہاں حساب لیں گے, کہیں دبک کے نکل جائیں گے, وہ تو نمبر ہے نا, وہ نمبر سے پکڑے جائیں گے, فلانے نمبر کا اکاؤنٹ نہیں آیا. ہمیں تو ہم جتنے ترکیباں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے سے بہتر ترکیب ہے, اور تم اب ویڈیو کیمراز آ گئے, ٹیپ ریکارڈرز آ گئے, انٹرنیٹس آ گئے, آپ میلوں دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, آپ کر سکتے, آپ کا خالق آپ کو پیدا کرنے والا یہ سب انتظام نہیں کر سکتا. پورا یہ جب آیات ہیں, یہ پہچاننے کی آیات ہیں کہ یہ پورے لگے ہوئے ہیں, پورے ریکارڈرز لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس, آڈیو ویڈیو, آنکھ سے برین پہ ریکارڈ ہو رہا جو کچھ دیکھ رہے ہیں, کان سے برین پہ ریکارڈ ہو رہا جو کچھ سن رہے ہیں, چکھ رہے ہیں, سنگ رہے ہیں, ہاتھ لگا رہے ہیں, خیال, خواب, نیت, عمل, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میموری چپ پہ ریکارڈ نہیں ہو رہی آپ کے, ہائی ڈینسٹی میموری چپ, 90 برس کی میموری جو ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کمپیوٹر پہ رکھ کے بولتے دیکھ لو میں, تو کیا آپ اپنی میموری کو جھٹلا سکیں گے کہ صاحب یہ میری میموری نہیں ہے؟ تو یہ ہر ایک گنتی کرا ہوا ہے یہاں, اور ہر ایک اکیلا آئے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجل لہم رحمان ودا, اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, رحمان یعنی فائدہ پہنچانے والے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے محبت ڈال دے گا. دیکھیے ایک بات سمجھیے, ہمارے کامن ایکسپیرینس میں بھی اچھے آدمیوں کو سبھی پسند کرتے ہیں, جو لوگ اچھے رہتے ہیں نا کچھ بھی بولے نہیں, یہ بڑا اچھا آدمی ہے, سبھی لوگ پسند کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت, جیسا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ محبت ڈال دی, انشاءاللہ یہ بات آئے گی, تو فرعون نے اس کا دشمن ان سے محبت کرنے لگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ڈالی گئی. تو بولے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے تو جبرائیل علیہ السلام کو بول دیتے کہ دیکھو میرے کو فلاں بندے سے محبت ہے, تو وہ تمام فرشتوں میں اناؤنس کرتے, وہ تمام زمین والوں میں فرشتے اناؤنس کر دیتے, تو سبھی لوگ جو ہے ایسے لوگوں سے محبت کرتے, اور ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے یعنی جو غیر مسلم بھی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں, نہیں بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا سیدھا آدمی ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ محبت بھی ہمارے طرف سے ڈالی جاتی ہے, تمہاری ارننگ نہیں ہے یہ, کہ تم سمجھیں گے میں اتنا اچھا بیہیو کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں, چاہ رہے ہیں, وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہ قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد, دو مقاصد یہاں آ رہے ہیں, وہ انما یسرنہ بلسانی کا لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا, اور ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں صرف اس لیے آسان کیا ہے کہ آپ متقین کو یعنی جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیں جنت کی, اور پھر جو جھگڑالو قوم ہے جو اس کے خلاف جاتی ہے ان کو دوزخ سے چوکنا کر دیں, کہ بھائی وارن کر دیں کہ بھائی دیکھو تم ایسا کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. تو قرآن کا مقصد کیا ہے کہ نیک لوگوں کو خوشخبری سنانا اور خراب لوگوں کو جو ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھائی اس میں جتنے واقعات آئے ہیں, نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہ ان کا جو کانورزیشن ہوا ہے یہ عربی میں نہیں ہوا ہے, یہ قسم کھا کے بول سکتے ہیں کہ عربی میں نہیں ہوا ہے, ان کی زبانیں الگ تھیں, موسیٰ علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کی, سب کی زبانیں الگ تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام زبانوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے لیے آسان کر دیا, عربوں کے لیے جو مخاطب قرآن تھے, پورا ٹرانسلیشن عربی میں کرے, عربوں پہ مخاطب قرآن جو تھے عرب تھے, ان کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے عربی نہیں آتی, جیسا پچھلے اتوار کوئی بات آئی تھی, کسی سے بات یہاں ہو رہی تھی کہ بھئی کوئی صاحب بولے میں مڈل ایسٹ گیا اور وہاں دیکھا کہ جب بھی سعودی عرب کوئی بھی اگر مسجد میں آتا تو پہلے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتا, اس کے بعد میں بیٹھتا قرآن کھول لیتا, اذان ہوتی اقامت ہوتی قرآن بند کرتا آ کے جوائن کر لیتا, ہمارے پاس کوئی قرآن ہی نہیں کھولتے, उसका रीजन यह है कि उसकी मादरी जबान है वो, उन्हें खोलता तो उसको समझ में आता, आपको समझ में ही नहीं आता ना। अच्छा, इसका सबूत और है कि ये 9/11 का जो हादसा हुआ, वर्ल्ड ट्रेड उसका टावर जो गिरा करा, उसके बाद का मैं खुद डिस्कवरी चैनल पे सुना हुआ हूं मैं कि ऑन एन एवरेज 35,000 अमेरिकन्स वर एक्सेप्टिंग इस्लाम, 35,000 अमेरिकन्स इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे थे हर साल। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या कैसा एक्सेप्ट करें, कुरान का शॉर्टेज हो गया अमेरिका में, दुकानों में कुरान अवेलेबल नहीं था, इतना बिका है। तो ये कुरान का ट्रांसलेशन पढ़े अंग्रेजी में अपनी जबान में, सबक लीजिए इनसे, वो अपनी जबान में कुरान का ट्रांसलेशन पढ़े, कुरान पढ़े, क्योंकि वो एजुकेटेड कौम है, बोले ये क्या किताब है साहब, ये क्या जबरदस्त किताब है, फौरन इस्लाम कबूल करे। उसके बाद उन्होंने तजवीद पे मेहनत की और उनकी तजवीद हमारे से बहुत बेहतर है। बखौल किसी बुजुर्ग के, एक जमाना ऐसा आएगा कि कुरान हलकों से नीचे नहीं उतरेगा, बोले हम खाली खाफ और खे के प्रोनंसिएशन में रह गए, खाली इसी में रह गए, अलीफ को खींचना, ऐन की आवाज यहां से निकालना, सही है, हर जबान का एक तरीका होता पढ़ने का, लेकिन कुरान का मकसद ये देखिए, कियामत में अल्लाह ताला इंशाल्लाह उम्मीद ऐसी है कि बुला के ये नहीं बोलेंगे मियां जरा सूरह रहमान पढ़ो, आप भी पढ़ो रहमान, आपकी तजवीद गलत है, देखो आपकी तजवीद ठीक है। हाँ ये पूछेंगे कि सूरह रहमान में ये जो बात आई थी इस पर तुम कितना ईमान लाए और कितना अमल करे, तब ये मालूम होता है कि ये कुरान को अरबों की जबान में आसान इसलिए किया था कि भाई नेक लोगों को जन्नत की बशारत दी जाए और बद लोगों को, खराब लोग जो हैं उनको दोजख से डराया जाए। वह कम अहलक ना खबल मिन खरनिन हल तहिस्सु मिन हम मिन अहदिन, क्या और कितनी ही बस्तियां, कितने ही जेनरेशन हमने जो है तबाह कर दिए हैं तुमसे पहले, क्या तुम इनमें से किसी का भी एहसास करते हो? जैसा भाई हमारे वालिदैन दादा परदादा को देखे, किसी का एहसास करते हो? और तस्मऊ लहुम रिक्ज़ा, या उनकी कोई आहट सुनते हो? खत्म हो गए वो, एक दिन बस रोए धोए लेके जाके दफना दिए, हो गया, एक थोड़े दिन गम रहा, भूल गए, उसके बाद में कोई नाम भी लिए तो कौन अजी अजी आपके आपके वालिद साहब, अरे रसैलक, ये हालत हो गई, मसरूफ है दुनिया की जिंदगी में। तो बोल रहे हैं कि देखो तुम भी तबाह होने वाले हैं, ये पहले के जनरेशन जो तबाह हुए हैं वैसा तुम भी तबाह होने वाले हैं, तुम के बारे में कुछ सुनते हो, कोई आहट सुनते हो?